समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद के इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज सवेरे कार्यक्रम। तो कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद। अनीता, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू अवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन वी हैव द लेटेस्ट इन नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 10th ऑफ फेब्रुवरी। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री इन द 8th एडिशन ऑफ हिज पॉपुलर इंटरैक्टिव प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा एट 11 AM टुडे ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग दूरदर्शन। The Prime Minister will interact with students, parents and teachers to offer insights on exam preparation, stress management and personal growth. The program will be telecast live on Akashvani, Doordarshan, Swayam, Swayam Prabha, the PMO YouTube channel and the social media channels of the Education and Information and Broadcasting Ministries.
With over 5 crore participation, this year's program exemplifies its status as a Jan Andolan, inspiring collective celebration of learning. Pariksha Pe Charcha 2025 will feature 7 insightful episodes, bringing together renowned personalities from diverse fields to guide students on essential aspects of life and learning. Over the years, Pariksha Pe Charcha has evolved into an opportunity aimed at transforming exam-related stress into positive energy. By addressing real questions and offering actionable solutions, Prime Minister Narendra Modi has bridged the gap between policy and practice, empowering students to thrive under pressure.
प्रधानमंत्री मोदी दो देशों फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर आज रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी पेरिस जाएंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के साथ भारत की रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी मजबूत करना है। श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ कल शुरू हो रहे AI एक्शन सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के अलावा मार्सिले में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन करेंगे।
Prime Minister Modi's tour marks a major step in boosting India's global reach and collaboration. As a champion of India's technological progress, he is set to co-chair the AI Action Summit tomorrow alongside French President Emmanuel Macron. The AI Summit will focus on establishing ethical and responsible guidelines for artificial intelligence. It is also expected to address the key issues like job displacement, security, privacy and fundamental rights. The Indian ambassador to France, Sanjay Kumar Singla, says,
Our concern is, for instance, it should be safe, open, inclusive, secure, trustworthy, how it's going to impact our workforce.
Ambassador Singla also highlights the inauguration of new Consulate General in Marseille, a major milestone under the India-Middle East-Europe Economic Corridor.
This consulate will serve 4 regions of southern France, and we have about 10,000, 12,000 people, Indian diaspora there. We also have major industries in that region, whether it's aerospace, chemicals, biotechnology, and that's the direction in which we are moving forward.
In addition to the summit and consulate in inauguration, Prime Minister Modi's France visit includes several bilateral meetings, CEO roundtables, and a visit to the International Thermonuclear Experimental Reactor. After his engagements in France, Prime Minister Modi will travel to the United States for a 2-day working visit focused on trade, strategic cooperation, and technology partnership. Rajadurai, Akashvani News, Paris.
Union Defence Minister Rajnath Singh will inaugurate Asia's biggest Aero India show in Bengaluru today. The 5-day event with the theme of Runway to a Billion Opportunities will showcase India's defence capabilities and indigenous innovations. Indigenously developed light combat aircraft Tejas, light combat helicopter Prachand, advanced light helicopter and C-295 transport aircraft produced in India will be on display during the event. Indian MSMEs and startups have an opportunity to forge joint ventures or collaborations with the global manufacturers and provide a resilient supply chain.
और अब प्रयागराज महाकुंभ की खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति प्रयागराज में अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र में आधुनिक तकनीक के जरिए महाकुंभ के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाकुंभ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है।
महाकुंभ मेला में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया भर के देशों से श्रद्धालु पवित्र संगम के आध्यात्मिक वातावरण में डुबकी लगा रहे हैं। अब तक 43 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। मौनी अमावस्या के दिन सबसे अधिक 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। वहीं मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ और बसंत पंचमी पर 2.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। राज्य सरकार का अनुमान है कि इस महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज आएंगे। 13 जनवरी से शुरू हुआ यह महाकुंभ का मेला 26 फरवरी तक चलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
India and Egypt will hold a joint military exercise called Cyclone 2025 at the Mahajan Field Firing Range in Rajasthan beginning today till February 23. The exercises aim to enhance defense cooperation between India and Egypt by focusing on sharing professional skills and improving interoperability of special forces in desert environments. This includes counter-terrorism operations, reconnaissance, raids and other specialized missions. Military cooperation between India and Egypt has strengthened in recent years. Both the countries have emphasized the need to strengthen security efforts.
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए हैं। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं और 2 अन्य जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया है। इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में IIAS DRPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें भाग लेने के लिए अब तक 55 देशों के 240 प्रतिनिधियों ने पंजीकरण करा लिया है। इस सम्मेलन के दौरान प्रस्तुति के लिए 350 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। ये सम्मेलन लोक प्रशासन, शासन और नीति निर्माण में नवाचारों के संबंध में चर्चा और अन्वेषण करने के उत्कृष्ट मंचों में से एक होगा। सम्मेलन का विषय है अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच कायम करना। भारत द्वारा लोक प्रशासन पर IIAS सम्मेलन की मेजबानी किए जाने का यह पहला अवसर है और वो ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में कर रहा है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा 25 और 26 फरवरी को गुवाहाटी में एडवांटेज असम के दूसरे चरण के अंतर्गत निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन 2025 को बढ़ावा देने के लिए कल से सिंगापुर की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उद्योगपति और कंपनियां भी शामिल होंगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सम्मेलन की तैयारियों का आकलन करने के लिए गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
The Israeli military has pulled out of the Negev corridor in central Gaza, a move confirmed by Hamas. This withdrawal is part of a ceasefire agreement between Israel and Hamas. Palestinian police force took charge of the area to manage the flow of Palestinians moving through it. The Negev corridor, about 4 miles long, had been occupied by Israeli forces since the early months of the war, cutting off northern Gaza from the south. Many Palestinians had crossed through the corridor to return to their homes after seeking refuge in southern Gaza.
और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले अनीता आप बताएं चेन्नई से क्या खबरें आपके पास।
प्राइवेट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फ्रॉम चेन्नई टू कश्मीर इज सेट टू डिपार्ट ऑन अप्रैल द सेकेंड फॉर द 15 डे जर्नी फ्रॉम चेन्नई। द सब्सिडाइज फेयर रेंजेज फ्रॉम 50,000 रुपीज टू 65,000 पर पैसेंजर। द ट्रेन इज ऑपरेटेड बाय साउथ स्टार रेल इन कोलेबोरेशन विद सदर्न रेलवे अंडर द भारत गौरव स्कीम। It covers Agra, Delhi and Amritsar with visits to the Taj Mahal, Fatehpur Sikri, Golden Temple and Pahalgam. Passengers can leave heavy luggage on the train under security while using a shuttle van or bus for local sightseeing. Accommodation is arranged for overnights. Fresh vegetarian South Indian food will be served on board prepared in the train's pantry for all 650 passengers throughout the journey. Bookings are available exclusively through www.tourtimes.in. Since 2021, Southern Railways have operated 80 private tourist trains from Chennai, carrying over 40,000 tourists under the Bharat Gaurav scheme. Tamil Nadu, two private operators, IRCTC and South Star Rail, run these services under the public-private partnership model. And now for news from मुंबई, ओवर टू मुकेश।
जी हाँ, तो सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि चंद्रपुर में बाबा आमटे के महारोगी सेवा समिति में प्रति मरीज वित्तीय सहायता 2,200 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए की जाएगी। समिति के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में श्री फडणवीस ने 10 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों से यात्रियों की सेवा को ईश्वर की सेवा मानने की अपील की है। उन्होंने पूरे राज्य में हर डिपो में स्वच्छ, आरामदायक और एसी शौचालय बनाने को कहा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने निगम कर्मचारियों की स्वास्थ्य और चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना साझा की है। और अनीता आप बताएं कि बेंगलुरु से क्या खबरें आपके पास।
कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट हैज इश्यूड अ नोट विद इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री इन द कंट्री। The note released on the eve of Aero India show in Bengaluru lists out the presence of prominent Indian and global industries manufacturing aerospace and defence equipment, products and devices. According to the note, Karnataka has 67% of aircraft and helicopter manufacturing industries at the national level. It boasts of a 70% supplier base with over 2,000 small and medium industries producing niche subcontracting work. Bengaluru is the top destination among the cities in India for FDI in aerospace. In partnership with private company Dassault, the state government has set up a center of excellence to provide industry-ready manpower for this sector. And now, for news from Kolkata, over to Mukesh again.
जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र आज कोलकाता में शुरू होगा। पहले दिन आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस सदन के सत्र को संबोधित करेंगे। राज्य का वार्षिक बजट 12 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा। भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में कल शोक सभा आयोजित की जाएगी।
In Telangana, celebrations were held across the state and district BJP offices to mark the party's resounding victory in Delhi assembly elections. Leaders and party workers burst firecrackers and distributed sweets in Hyderabad. A large number of BJP workers joined the celebrations, holding party flags. They raised slogans, burst crackers and distributed sweets. Union Minister Kirishan Reddy, MPs K. Lakshman, Konda Vishwar Reddy and other leaders participated in the celebrations. Speaking on the occasion, Kirishan Reddy stated that the people of Delhi have realized that development is possible only under a double-engine government. He stated that the people of Telangana also want the double-engine government of BJP in the state. And now news from Delhi.
जी बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने नव निर्वाचित विधायकों की सूची कल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सौंप दी। ये सूची निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अजय कुमार और दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिसबाज ने सौंपी। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूप से सम्पन्न हो गई है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने का भरोसा दिलाया है। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने बदलाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए वोट दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली को विकसित राजधानी बनाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। सुश्री आतिशी कालकाजी सीट जीतने में सफल रही हैं। उन्होंने पिछले वर्ष सितंबर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस बीच उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की 7वीं विधानसभा भंग कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीट जीती हैं। आम आदमी पार्टी केवल 22 सीट ही जीत सकी है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। और 52वां विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली के भारत मंडप में कल संपन्न हो गया। 9 दिन के सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ने किया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मेले में लगभग 2000 से अधिक प्रकाशकों और 1000 वक्ताओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा सरकार ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में एक समिति की टीम गठित की है, जिसमें 3 ओलंपिक पदक विजेता सदस्य होंगे। ये समिति प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें निखारने, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रदर्शन की निगरानी के साथ साथ कोच के मूल्यांकन करने के बारे में जरूरी सलाह देगी। 17 सदस्यीय खेल विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सदस्य मुक्केबाज मैरी कॉम, टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल होंगे, जिन्होंने ओलंपिक पदक जीते हैं। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से समिति की उपाध्यक्ष होंगे, जबकि खेल सचिव संयुक्त सचिव संयोजक होंगे। समिति में सरकार के प्रतिनिधि और विभिन्न खेलों से सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित खिलाड़ी भी शामिल होंगे। अनीता, देश दुनिया के समाचार हो गए और अंतर्राष्ट्रीय जगत के भी समाचार हो गए, और अब बारी आती है खेल जगत के समाचारों की। तो खेल जगत की हलचल लेकर स्टूडियो पहुंच चुके हैं माणिक शर्मा। माणिक, बताएं आप खेल की खबरें कहां से शुरू करेंगे?
मुकेश, इन क्रिकेट इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय 4 विकेट्स इन कटक लास्ट नाइट, सिक्योरिंग एन अनअसेलेबल 2-0 लीड इन द 3-मैच ओडीआई सीरीज। दिस विक्ट्री मार्क्स इंडिया सेवेंथ कंसेक्यूटिव बायलेटरल ओडीआई सीरीज विन एट होम अगेंस्ट इंग्लैंड। द मेन इन ब्लू सक्सेसफुली चेज डाउन अ टारगेट ऑफ 305 रन इन जस्ट 44.3 ओवर्स। कैप्टन रोहित शर्मा लेड फ्रॉम फ्रंट विद अ स्टेलर नॉक ऑफ 119 रन्स, अर्निंग हिम द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। अर्लियर, आफ्टर ऑप्टिंग टू बैट फर्स्ट, इंग्लैंड वर बोल्ड आउट फॉर 304 रन्स। रविंद्र जडेजा वॉज द पिक ऑफ द बॉलर्स फॉर host, taking 3 wickets. The third and final match of the series will take place in Ahmedabad on Wednesday. In the Indian Super League football, Bengaluru FC defeated Jamshedpur FC at the Sri Kantirwa Stadium in Bengaluru yesterday. This victory ended the Blues' 3-match winless streak at home and moved them to 4th place in the standings. And in chess, Indian Grandmaster D. Gukesh suffered a defeat in Game 1 of his quarterfinal clash against world number 3 Fabiano Caruana at the Freestyle Chess Grand Slam Tour in Weissenhorst, Germany yesterday. However, Gukesh remains in contention as he will face Caruana in Game 2 of the quarterfinals today with an opportunity to force a tiebreaker. Gukesh is in a must-win situation against the formidable world number 3 in the second game. Mukesh.
और आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और अनीता आनंद के साथ। और आज सवेरे में वक्त हुआ है मौसम का हाल जाने का। तो अनीता, सबसे पहले दिल्ली का मौसम बता देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम सामान्य रहा। हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना थी, लेकिन ऐसा कुछ दिखने में नहीं आया। मौसम साफ है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता का रुख करें तो सवेरे हल्का कोहरा छाया रहा, बाद में आसमान साफ रहेगा। आज का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और मुंबई का रुख करें तो वहां पर आसमान साफ है और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो ये बात
Chennai is expected to have a fog mist in the morning and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Bengaluru is expected to have fog and mist in the early morning. The minimum temperature was 16 degrees Celsius and the maximum will be around 32 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 20 and a maximum of 33 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 10 फरवरी है। आज ही के दिन 1763 में पेरिस संधि के अंतर्गत फ्रांस ने कनाडा ब्रिटेन को दे दिया था और इसी के साथ फ्रांस और भारत के बीच युद्ध भी समाप्त हुआ था।
इन 1879 फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी वॉज यूज फॉर लाइटिंग in California Theatre of America. In 1921, one of India's biggest and most popular universities, the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth Public University, was established in Varanasi, Uttar Pradesh. In 1927, J.R.D. Tata became the first person in India to obtain a pilot's license.
और 1818 में आज ही के दिन अंग्रेजों और मराठा के बीच तीसरा और अंतिम युद्ध रामपुर में लड़ा गया था, जबकि 1921 में ड्यूक ऑफ कैनट ने इंडिया गेट की नींव रखी थी. इसके अलावा 1931 में दिल्ली भारत की राजधानी बना था.
इन 1940 फर्स्ट टॉम एंड जेरी कार्टून फर्स्ट गेट्स द बूट क्रिएटेड बाय विलियम हाना एंड जोसेफ बारबेरा इज रिलीज टू इन थिएटर्स बाय MGM.
1933 में आज ही के दिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने देश में मार्क्सवाद समाप्त होने की घोषणा की थी. 1947 में आज ही के दिन नीदरलैंड्स रेडियो यूनियन की स्थापना की गई थी.
इन 1979 ईटानगर वॉज मेड द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. इन 1992 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ओपन टू फॉरेन टूरिस्ट्स.
1961 की बात करें तो आज ही के दिन कनाडा में नियाग्रा जलप्रपात की पन बिजली परियोजना से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया. 1972 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने पूर्वी कजाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था. इसके अलावा 1996 की बात करें तो आज ही के दिन IBM सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज में गैरी कास्परोव को हराया था. और 2009 में आज ही के दिन प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया.
एंड टाइम नाउ टू रिमेम्बर पीपल हु आर आइदर बॉर्न दिस डे और हु पास्ड अवे टुडे. एंड वी बिगिन दिस सेगमेंट बाय रिमेम्बरिंग आर्थर एशर मिलर हुज डेथ एनिवर्सरी इज टुडे. ही पास्ड अवे इन 2005. द अमेरिकन playwright, essayist and screenwriter in the 20th century American theater. Among his most popular plays are All My Sons, written in 1947, Death of a Salesman, The Crucible and A View from the Bridge, written in 1955. He wrote several screenplays, including The Misfits, 1961. The drama Death of a Salesman is considered one of the best American plays of the 20th century. Miller was often in the public eye, particularly during the late 1940s, 50s and 60s. During this time, he received a Pulitzer Prize for drama, testified before the House of Un-American Activities Committee. In 1980, he received the St. Louis Literary Award from the St. Louis University Library Associates. He received the Premier Imperial Prize in 2001 and Prince of Asturias Award in 2002.
और हिंदी के समकालीन कवि सुदामा पांडे धूमिल की आज पुण्यतिथि है. उनकी कविताओं में आजादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है. व्यवस्था जिसने जनता को छला है उसको आईना दिखाना मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य था. इन्हें मरणोपरांत 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उनकी मुख्य रचनाओं में संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, धूमिल की कविताएं, किस्सा जनतंत्र और मोचीराम शामिल हैं.
Today is also the death anniversary of Alexander Murray Palmer Haley, the American writer and the author of a 1976 book, Roots, The Saga of an American Family. ABC adapted the book as television miniseries of the same name and aired it in 1977 to a record-breaking audience of a whopping 130 million viewers. In the U.S., the book and the miniseries raised the public awareness of black American history and inspired a broad interest in genealogy and family history. Haley's first book was Autobiography of Malcolm X, published in 1965, and a collaboration through numerous lengthy interviews with Malcolm X.
और प्रसिद्ध कथाकार और साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य और साक्षात्कार के संस्थापक संपादक गुलशेर खान शानी की आज पुण्यतिथि है. नवभारत टाइम्स में भी उन्होंने कुछ समय तक काम किया. अनेक भारतीय भाषाओं के अलावा रूसी, लिथुआनी, चेक और अंग्रेजी में भी उनकी रचनाएं अनुदित हुई थी. वे मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान से अलंकृत और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत हैं. शानी एक ऐसे कथा लेखक हैं जो अपनी समसामयिक विषय की पृष्ठभूमि को अपने लेखन से प्रभावित करते हैं. उन्होंने समकालीन शैलीगत प्रभाव को पूर्ण रूप से प्रयोग करते हुए अपने उपन्यास में नई शैलीगत मान्यताओं को प्रक्षेपित किया है जो अपने आप में शैली की दृष्टि से विशिष्ट हैं. शानी ने अपनी अनुभूतियों और विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए अच्छी शैली का प्रयोग किया है. इनके उपन्यास साहित्य के पात्र जितना कुछ बोलते हैं उससे कहीं अधिक अपने भीतर की पीड़ा और वेदना को अभिव्यक्त भी करते हैं.
टुडे इज ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ शर्ली टेम्पल ब्लैक. She passed away on this day in 2014, born in 1928. The American actress, singer, dancer, diplomat, who's Hollywood's number one box office draw as a child actress from 1934 to 1938. Later, she was named a United States Ambassador to Ghana and Czechoslovakia and also served as Chief of Protocol of the United States. Temple began her film career in 1931 when she was just 3 years old and was well known for her performance in Bright Eyes, which was released in 1934. She won a special Juvenile Academy Award in February of 1935 for her outstanding contribution as a juvenile performer in motion pictures and continued to appear in popular films through the remainder of 1930s. She appeared in her last film, A Kiss for Corliss, in 1949. Temple was a recipient of numerous awards and honors, including the Kennedy Center Honors and Screen Actors Guild Achievement Award. She is the 18th on the American Film Institute's list of greatest female American screen legends of classic Hollywood cinema. A snippet of one of her performances.
But I like chicken cause I'm from the south. Sing Polly Wally Doodle all the day. Farewell,
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 farewell.
Mr. Gloom, be on your way. If you think you're gonna worry, you can stop it in a hurry. Sing Polly Wally Doodle all the day.
और मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा कस्बे के शासक राजा बख्तावर सिंह की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश में अंग्रेजों से संघर्ष किया। लंबे संघर्ष के बाद छलपूर्वक अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया। 1858 में इंदौर के महाराजा यशवंत चिकित्सालय परिसर के एक नीम के पेड़ पर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उनका परिवार रिंगनोद किले में जाकर रहने लगा, जो अजमेर का दूसरा किला था। अजमेरा के अमझेरा के आखिरी शासक राव लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ थे।
है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
Today is also the death anniversary of Roy Richard Schrider. He passed away in 2008, the American actor, described as all movie as one of the most unique and distinguished of all Hollywood actors. He achieved fame with his leading and supporting roles in celebrated films from the 1970s through mid-1980s. He was nominated for 2 Academy Awards, 1 Golden Globe and 1 BAFTA. Schrider's best-known roles include Frank Ligorin, include Martin Brody in Jaws, and 1978 sequel Claudio Russo in The French Connection, Buddy in The 7-Ups, Doc Levy in Marathon Man. I'm playing a snippet from his film All That Jazz, Bye Bye Love.
Bye bye your life, goodbye. He's gonna die.
और हिंदी के शीर्ष आलोचकों में गिने जाने वाले प्रतिष्ठित साहित्यकार परमानंद श्रीवास्तव की आज जयंती है। आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2006 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रेमचंद पीठ की स्थापना में उनका विशेष योगदान रहा। कई पुस्तकों के लेखन के अतिरिक्त उन्होंने हिन्दी भाषा की साहित्यिक पत्रिका आलोचना का संपादन किया। परमानंद श्रीवास्तव भारत भारती पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे।
And born on this day is K.C. Bukhadia, Kistur Chand Bukhadia, the Indian filmmaker born in Rajasthan, has produced Pyar Jhukta Nahi, Teri Meherbaniya, Naseeb Apna Apna, Hum Tumhare Hain Sanam, Pyar Zindagi Hai, and Main Tera Dushman. He's directed Phool Bane Angare, Police Aur Mujrim, Insaniyat Ka Devta. I'm playing a snippet from Pyar Jhukta Nahi, a song.
Aur bhi kuch yaad aata hai.
आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों,
तुमसे मिलकर ना जाने क्यों।
तो श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रहे हैं कि आज का आज सवेरा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाए, तो अनुमति दें मुकेश कुमार और अनीता आनंद को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।